एकत्र फाउंडेशन प्रस्तुत करते हैं ग्रंथसार, विश्व की श्रेष्ठ कृतियों का सार अब हमारी भाषा में। यह ऑडियो सारांश एकत्र एआई की मदद से तैयार किया गया है। ग्रंथसार में आप सबका स्वागत है। आज हम एक ऐसी कहानी में गोता लगाने वाले हैं जो प्यार, इंतजार और समय की कहानी है, आधी सदी से भी लंबी।
जी हाँ, हम बात कर रहे हैं गैब्रियल गार्सिया मार्केज के कालजयी उपन्यास लव इन द टाइम ऑफ कोलेरा की।
वही मार्केज जिन्हें गाबो के नाम से जाना जाता है, नोबेल पुरस्कार विजेता, और वो जादुई यथार्थवाद के मास्टर।
बिल्कुल, और ये उपन्यास जो 1985 में आया, कहते हैं कि उनके अपने माता पिता की प्रेम कहानी से प्रेरित है। इसकी सेटिंग है 19वीं सदी के आखिर और 20वीं सदी की शुरुआत का एक कैरिबियाई शहर।
और कहानी का जो केंद्रीय धागा है वो तो कमाल का है, फ्लोरेंटिनो एरिजा का फर्मीना डाजा के लिए। कितना बताया था आपने?
51 साल 9 महीने और 4 दिन का इंतजार। अविश्वसनीय है ना?
सच में। और उपन्यास की शुरुआत भी कम नाटकीय नहीं। कहानी शुरू होती है डॉक्टर जुवेनाल उर्बिनो की मौत से, जो फर्मीना के पति हैं।
हाँ, और वो भी कैसे, एक तोते को पकड़ने के चक्कर में सीढ़ी से गिरकर। मतलब मार्केज की लेखनी में ये जो रोजमर्रा की चीजों में अजीबोगरीब बातें ढूंढ निकालना है वो कमाल का है।
बिल्कुल। और इसी मौत के बाद उनके अंतिम संस्कार वाले दिन सालों से, दशकों से इंतजार कर रहा फ्लोरेंटिनो पहुंच जाता है फर्मीना के पास।
हाँ हाँ, और वहाँ उस माहौल में वो अपने शाश्वत निष्ठा और अमर प्रेम का ऐलान कर देता है।
जरा सोचिए क्या टाइमिंग है। यहीं से फिर कहानी फ्लैशबैक में जाती है ना?
जी, यहीं से मार्केज हमें इस प्रेम कहानी की शुरुआत में ले जाते हैं, और ये हमें उस बड़े सवाल पर लाता है जो उपन्यास पूछता है
कि आखिर ये प्यार है क्या चीज? क्या ये सिर्फ जवानी का एक बुखार है, एक भ्रम, या इसमें कुछ टिकने वाली बात भी है?
और मार्केज इसे बड़ी खूबसूरती से शहर में फैली हैजा यानी कॉलेरा की बीमारी से जोड़ते हैं।
जैसे प्यार भी एक बीमारी हो।
हाँ, एक तरह की आत्मा की बीमारी जिसके लक्षण हैजा जैसे ही हैं।
हाँ, मैंने पढ़ा था कि शुरुआती दिनों में तो फ्लोरेंटिनो की हालत देखकर लोग सच में सोचते हैं कि उसे कॉलेरा हो गया है।
बिल्कुल। तो कहानी जाती है 50 साल पीछे। एक जवान, थोड़ा शर्मीला सा टेलीग्राफ ऑपरेटर है, फ्लोरेंटिनो एरिजा। वो फर्मीना डाजा को देखता है और बस,
पहली नजर में प्यार।
हाँ, कह सकते हैं एकदम दीवाना हो जाता है। फिर शुरू होता है खतों का दौर, चूरी छिपे। फर्मीना की चाची हैं एस्कोलास्टिका, वो उसमें मदद करती हैं।
अच्छा।
और फ्लोरेंटिनो रात में वायलिन लेके पहुंच जाता है फर्मीना की खिड़की के नीचे, सेरेनेट देता है। पूरा रोमानी माहौल।
लेकिन ये सब ज्यादा दिन चलता नहीं होगा। ऐसे रोमानी सपनों का क्या होता है असल दुनिया में?
सही कहा। फर्मीना के पिता हैं लोरेंजो डाजा। वो नए नए अमीर बने हैं खच्चरों का व्यापार करके, और उन्हें अपनी सामाजिक हैसियत की बड़ी चिंता है। उन्हें फ्लोरेंटिनो जैसा दामाद मंजूर नहीं।
क्लास डिफरेंस वाली बात।
हाँ, तो वो फर्मीना को एक बहुत लंबी यात्रा पर ले जाते हैं ताकि वो फ्लोरेंटिनो को भूल जाए।
और क्या वो भूल जाती है?
यही कहानी का एक बहुत अहम और शायद दुखद मोड़ आता है, जब फर्मीना यात्रा से लौटती है और सालों बाद फ्लोरेंटिनो को अचानक बाजार में देखती है, तो उसका सारा मुंह टूट जाता है।
अरे क्यों?
उसे अचानक लगता है कि ये वो आदमी नहीं जिससे वो प्यार करती थी। वो सारा प्यार, वो भावनाएं, उसे लगता है सब एक भ्रम था, एक वहम।
ओह, ये तो फ्लोरेंटिनो के लिए बहुत बड़ा झटका होगा।
बहुत बड़ा। फर्मीना उसे एक छोटा सा सीधा सा खत लिखती है, भूल जाओ बस। ये फर्मीना के चरित्र का यथार्थवादी पहलू दिखाता है। वो सपनों से ज्यादा हकीकत को चुनती है।
और उसकी हकीकत क्या बनती है फिर?
उसकी हकीकत बनती है डॉक्टर जुवेनाइल उर्बिनो से शादी। डॉक्टर उर्बिनो शहर के सबसे प्रतिष्ठित परिवारों में से एक हैं। अमीर, पढ़े लिखे, यूरोप से लौटे डॉक्टर, मतलब फ्लोरेंटिनो से बिल्कुल अलग।
हाँ, जाहिर है, सुरक्षा, सम्मान, सामाजिक मेलजोल, ये सब होगा इस रिश्ते में।
बिल्कुल। ये शादी जुनून पर नहीं बल्कि इन चीजों पर ही आधारित है। डॉक्टर उर्बिनो विज्ञान, प्रगति, तर्क के प्रतीक हैं। वो शहर से हैजा मिटाने के लिए काम करते हैं।
और बेचारा फ्लोरेंटिनो, उसका क्या होता है इस अस्वीकृति के बाद?
फ्लोरेंटिनो टूटता नहीं है बल्कि वो एक लगभग पागलपन भरा संकल्प लेता है कि वो फर्मीना का इंतजार करेगा, चाहे जब तक करना पड़े।
लेकिन वो अकेला कैसे इंतजार करता है?
यहीं कहानी में एक और दिलचस्प मोड़ आता है। उसकी माँ उसे एक सलाह देती है जो बहुत अजीब लगती है सुनने में। वो कहती हैं, प्रेम का इलाज अधिक प्रेम है।
प्रेम का इलाज अधिक प्रेम, इसका क्या मतलब हुआ?
मतलब ये कि फ्लोरेंटिनो इस सलाह को अक्षर अक्षर मान लेता है। वो फरमीना के लिए अपनी शाश्वत निष्ठा को दिल में रखता है, लेकिन साथ ही अगले 50 सालों में वो अपनी नोटबुक्स में बाकायदा दर्ज करता है 622 महिलाओं से प्रेम संबंध बनाता है।
क्या 622? एक तरफ शाश्वत निष्ठा और दूसरी तरफ 622 रिश्ते। ये कैसा विरोधाभास है, क्या ये धोखा नहीं?
यही तो मार्केस की खूबी है, वो पात्रों को इतना जटिल बनाते हैं। देखिए, ये कहना बहुत मुश्किल है कि ये क्या था। क्या ये फर्मीना को धोखा था, या शायद ये फ्लोरेंटिनो का तरीका था अपने अंदर उस पहले प्यार की आग को जिंदा रखने का। उसे लगता था कि शारीरिक प्रेम अलग है और वो रूहानी प्रेम जो उसे फर्मीना से था वो अलग।
ये एक नजरिया हो सकता है, मतलब वो शरीर और आत्मा को अलग अलग रख रहा था।
शायद उसके ये 622 रिश्ते शायद उसके अकेलेपन का, उसकी वासना का इलाज थे, लेकिन उसका दिल, उसका जो वो रूहानी प्रेम था, वो हमेशा फर्मीना के लिए ही रहा। वो रिवर कंपनी ऑफ द कैरिबियन में नौकरी करता है, धीरे धीरे तरक्की करके प्रेसिडेंट बन जाता है, लेकिन असल में वो हमेशा फर्मीना का ही इंतजार कर रहा है।
और फर्मीना, उसकी जिंदगी कैसी चल रही है इन 50 सालों में डॉक्टर उर्बिनो के साथ?
उसकी जिंदगी एक आम शादीशुदा जिंदगी जैसी है। शुरुआती तालमेल बिठाने की मुश्किलें हैं, आदतें हैं, थोड़ी बोरियत भी है। एक वक्त आता है जब डॉक्टर उर्बिनो का एक अफेयर भी सामने आता है।
अच्छा, तो रिश्ता टूटता नहीं?
नहीं, दरार आती है, लेकिन वो लोग सुलह कर लेते हैं। वक्त के साथ उनका रिश्ता एक सहज साथीपन में बदल जाता है। मतलब वो जुनून नहीं रहता, लेकिन एक दूसरे का साथ, एक आदत, एक निर्भरता बन जाती है। मार्केज ये दिखाते हैं कि समय के साथ प्रेम कैसे बदलता है।
तो फर्मीना एक तरह से सेटल हो जाती है, एक सम्मानित पत्नी, माँ, समाज का हिस्सा।
वो बस दूर से देखता रहता है, इंतजार करता है।
और फिर वो दिन आता है डॉक्टर उर्बिनो की मौत। 50 साल से ज्यादा का इंतजार, अब क्या होता है?
अब फ्लोरेंटिनो के लिए दरवाजा खुलता है, लेकिन इस बार उसका अंदाज बहुत अलग है। वो अब वो पहले वाला बेचैन आशिक नहीं रहा।
मतलब
अब वो जोशीली कविताएं या वैसे पत्र नहीं लिखता। उसके पत्र अब ज्यादा शांत हैं, ज्यादा गहरे। वो जीवन पर, प्यार पर, बुढ़ापे पर, मौत पर अपने विचार लिखता है। वो फर्मीना को धीरे धीरे याद दिलाता है उनके पुराने वादे।
और फर्मीना का क्या रिएक्शन होता है? वो तो उसे सालों पहले ठुकरा चुकी थी।
शुरू में वो बहुत नाराज होती है, उसे लगता है ये बुढ़ापे का पागलपन है। वो उसे छिड़क देती है, लेकिन फ्लोरेंटिनो हार नहीं मानता। वो सब्र रखता है, लिखता रहता है, और धीरे धीरे फर्मीना का दिल पिघलने लगता है। उसके शब्दों की ईमानदारी, उसका इतना लंबा इंतजार असर करता है।
ये तो बड़ा ही मार्मिक हिस्सा होगा उपन्यास का, दो बूढ़े लोग जिन्होंने लगभग पूरी जिंदगी अलग बिताई।
हाँ, बहुत खूबसूरत हिस्सा है। वो मिलने लगते हैं, पहले घर पर, फिर बाहर पार्क की बेंचों पर। उनमें एक नई तरह की दोस्ती पनपती है, एक साथीपन। वो एक दूसरे को फिर से जानते हैं, समझते हैं।
लेकिन समाज क्या कहता है?
समाज का आसानी से मानता है ये सब, खासकर फर्मीना की अपनी बेटी ओफेलमिया। उसे ये बिल्कुल पसंद नहीं आता। वो अपनी माँ पर बहुत गुस्सा होती है, कहती है इस उम्र में ये सब, लोग क्या कहेंगे।
हमेशा की तरह लोग क्या कहेंगे।
लेकिन इस बार फर्मीना, जो हमेशा शायद दूसरों के हिसाब से चली, वो अपने लिए खड़ी होती है। वो अपनी बेटी को समाज को नज़रअंदाज करके अपनी खुशी चुनती है। ये उसकी जिंदगी का दूसरा बड़ा मोड़ है, कह सकते हैं। पहला था फ्लोरेंटिनो को ठुकराना, और अब ये उसे अपनाना।
वाह, ये फर्मीना का एक नया रूप है।
हाँ, और इसी सामाजिक नुक्ताचीनी से बचने के लिए फ्लोरेंटिनो एक आइडिया लेकर आता है।
क्या?
एक नदी यात्रा। वो फर्मीना को अपनी कंपनी के स्टीमर पर मैग्डालेना नदी की एक लंबी अनिश्चित यात्रा पर ले जाने का प्रस्ताव रखता है, जहाँ कोई देखने वाला ना हो, कोई टोकने वाला ना हो।
और वो मान जाती है।
हाँ, वो मान जाती है, और ये यात्रा ही उपन्यास का क्लाइमैक्स है। 50 साल से भी ज्यादा के इंतजार के बाद स्टीमर के एकांत में फ्लोरेंटिनो और फर्मीना का प्यार आखिरकार शारीरिक रूप से पूरा होता है।
तो ये एक हैप्पी एंडिंग है
एक तरह से, लेकिन मार्केज इसे इतना सीधा नहीं रखते। वो नदी और उसके किनारों का जो वर्णन करते हैं, वो उजड़ा हुआ है, तबाह है। वनों की कटाई, गृह युद्ध, ये सब उस परिदृश्य में दिखता है। ये शायद गुजरते वक्त का, उनके बूढ़े शरीरों का, और शायद उनके प्यार का भी प्रतीक है, जो अब जवानी के जोश वाला नहीं, बल्कि शांत, गहरा, थोड़ा उदास सा है।
और जब यात्रा खत्म होने वाली होती है, तब क्या? उन्हें वापस तो आना ही होगा।
यही फ्लोरेंटिनो अपना मास्टर स्ट्रोक खेलता है। जब आखिरी बंदरगाह आता है और उन्हें असल दुनिया का सामना करना है तो वो इस आज़ादी को, इस एकांत को खोना नहीं चाहता। वो कप्तान को हुक्म देता है कि जहाज पर कॉलेरा का पीला झंडा फहरा दो।
क्या? हैजा का झंडा? क्यों?
ताकि कोई उनते जहाज के पास ना आए। पीला झंडा मतलब प्लेग शिप, संक्रामक बीमारी। अब उन्हें कोई नहीं रोकेगा, कोई कहीं उतरने को नहीं कहेगा। वो हमेशा के लिए उस नदी पर अपने एकांत में यात्रा करने के लिए आज़ाद हैं।
अरे ये तो बिल्कुल मार्कस स्टाइल है, जादुई यथार्थवाद का चरम।
बिल्कुल। और जब आखिर में सालों बाद भी वो नदी पर ही चक्कर काट रहे होते हैं और थका हुआ कप्तान पूछता है कि साहब ये आना जाना कब तक चलेगा, तो फ्लोरेंटिनो जवाब देता है।
क्या कहता है?
हमेशा के लिए।
वाह, क्या अंत है। लेकिन ये हमेशा के लिए, क्या ये सच है या ये भी एक और भ्रम है जो उन्होंने खुद बना लिया?
ये सवाल मार्केस पाठक पे छोड़ देते हैं।
यस।
ये उपन्यास हमें प्यार के कितने अलग अलग रूप दिखाता है ना? फ्लोरेंटिनो का वो जुनूनी, लगभग बीमार किस्म का इंतजार, फर्मीना और जुवेनाल का वो स्थिर, सुरक्षित व्यवहारिक साथ,
और फ्लोरेंटिनो के वो 622 शारीरिक रिश्ते भी।
हाँ, वो भी। और फिर आखिर में फ्लोरेंटिनो और फर्मीना का ये बुढ़ापे का शांत, समझदार साथीपन वाला प्यार। शायद मार्केस यही कह रहे हैं कि प्यार का कोई एक रूप नहीं होता, कोई एक सही तरीका नहीं होता।
और वो कॉलेरा वाली बात, प्यार के लक्षण हैजे के समान होते हैं, ये बात बार बार दिमाग में आती है। दोनों ही आपको दुनिया से अलग कर देते हैं।
हाँ, और दोनों ही पीड़ा देते हैं, लेकिन शायद जीने का एक तीव्र एहसास भी देते हैं। ये उपन्यास समय और याददाश्त पर भी बहुत कुछ कहता है। समय कैसे हमें, हमारी भावनाओं को बदल देता है, कैसे फ्लोरेंटिनो अपनी यादों के सहारे जीता है, और कैसे फर्मीना को अपनी ही जवानी की यादें एक भ्रम लगती हैं।
मार्केस का एक और कोट याद आ रहा है, इंसान एक बार ही पैदा नहीं होता, बल्कि जीवन उसे बार बार खुद को जन्म देने के लिए मजबूर करता है। ये बात फ्लोरेंटिनो और फर्मीना दोनों पर लागू होती है, खासकर बुढ़ापे में।
सही कहा। और उम्र का बढ़ना यहाँ सिर्फ एक ढलान नहीं है, मार्केस दिखाते हैं कि इसमें भी गहराई है, समझ है, और एक अलग तरह के, शायद ज्यादा परिपक्व प्रेम की संभावना है।
प्रेम और मृत्यु का जो रिश्ता है वो भी बहुत गहरा है इसमें। हैजा की पृष्ठभूमि, डॉक्टर रुबिनो की मौत, जेरेमिया डी सेंट अमोर की आत्महत्या, मृत्यु जैसे कहानी को आगे बढ़ाती है, प्रेम को और जरूरी बना देती है।
फ्लोरेंटिनो के लिए तो जैसे प्रेम ही मृत्यु पर विजय है। वो सोचता है मरने का एकमात्र अफसोस ये होगा कि ये प्यार के लिए ना हो।
मार्केस के लिखने की शैली भी तो अद्भुत है, वो जो सर्वज्ञ कथावाचक है, जो सबके मन में झांक लेता है।
हाँ, और समय में आगे पीछे कूदना, जैसे हमारी यादें काम करती हैं, बिल्कुल वैसे ही। और वो जादुई यथार्थवाद को पुट, जैसे फ्लोरेंटिनो के 622 अफेयर या वो अजीब सत्तो था, ये सब कहानी को एक अलग ही स्तर पर ले जाता है।
प्रतीक भी बहुत है, कॉलेरा, नदी, खत, वो पीला झंडा, हर चीज के कई मतलब निकलते हैं। और विडंबना तो भरी पड़ी है, डॉक्टर उर्बिनो की मौत, फ्लोरेंटिनो की निष्ठा।
तो कुल मिलाकर ये उपन्यास पढ़ने के बाद एक मिलाजुला सा एहसास होता है। एक तरफ लगता है कि प्यार की जीत हुई, जिंदगी की जीत हुई, पर साथ ही एक उदासी सी भी रहती है, गुजरे हुए वक्त की, खोए हुए मौकों की।
हाँ, ये सोचने पर मजबूर करता है कि फ्लोरेंटिनो का जुनून क्या था, महान प्रेम या सिर्फ एक पागलपन? फर्मीना ने आखिर में प्यार चुना या अकेलेपन से बचने का रास्ता?
शायद इसका कोई एक जवाब नहीं है, और यही इस उपन्यास की खूबसूरती है। ये हमें दिखाता है कि प्यार कितना जटिल, कितना बहुरंगी, कितने विरोधाभासों से भरा हो सकता है।
ये सुंदर भी है, अजीब भी, दर्दनाक भी, और
शायद सबसे बड़ी बात ये सिखाता है कि जिंदगी कभी भी खत्म नहीं होती, आखिरी पड़ाव पर भी नई शुरुआत हो सकती है, अगर हम हिम्मत दिखाएं।
बिल्कुल, अगर हम समाज की बनाई लकीरों को पार करने का साहस करें।
सही कहा।
यह संवाद यहीं समाप्त होता है, फिर मिलेंगे विश्व साहित्य की एक और अनोखी कृति के साथ। यह ऑडियो सारांश आपके लिए एकत्र फाउंडेशन द्वारा प्रस्तुत है।